जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन जा रवन जारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा,
भागवत के सप्तम स्कंद में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज की कथा श्रवण कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु एक ऐसा असुर है। वास्तव में हिरण्यकशिपु का अर्थ ही होता है, हिरण्य का अर्थ होता है सोना और कशिपु का अर्थ होता है बिस्तर। जो सोने के बिस्तर पर सोता है उसे हिरण्यकशिपु कहा जाता है। इतना भोगी था, इतना आसक्त था, वे सोने के बिस्तर के ऊपर सोता था। परंतु भक्तों, चाहे सोने का बिस्तर हो या हीरे जवाहरात का बिस्तर हो, हृदय में यदि शांति नहीं है, संतोष नहीं है, तो वह सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। बाहर से इस भौतिक शरीर को सजाने से वास्तविक सुख नहीं मिलता है, जब तक आत्मा सुखी न हो जाए। प्रभुपाद जी दृष्टांत देते हैं, जैसे तोते को एक पिंजरे में बंद करके रखा जाए, तोते को भोजन न देकर पिंजरे को ही रोज रात दिन साफ करते रहो, चाहे सोने का पिंजरा हो, चाहे हीरे जवाहरात का पिंजरा हो, जब तक उस तोते को भोजन नहीं देते हो तब तक वह सुखी नहीं होता है। वैसे ही भक्तों, जब तक आत्मा के लिए हम कार्य नहीं करेंगे तब तक जीवन में वास्तविक सुख नहीं आ सकता। आत्मा का भोजन है भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना, भगवान का नाम लेना। परंतु हिरण्यकश्यपु इस बात को नहीं जानता था। बहुत बड़ा असुर, असुरों का सम्राट था, परंतु देववश भगवान की कृपा से, भगवान के भक्त श्री नारद मुनि की कृपा से, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु के गर्भ से महाभागवत भगवान से विष्णु का परम भक्त जन्म लिया और उनका नाम था प्रहलाद। कई दिनों से यह कथा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद पढ़ने के लिए गुरुकुल में गया था। जब पहली बार, प्रथम बार प्रहलाद गुरुकुल से पढ़कर आया, हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, तो प्रहलाद महाराज ने क्या उत्तर दिया था? तत साधु मनिये असुर वर्य देहि नाम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। पिताजी, ये अंधेरे कुएं के समान घर गृहस्थी को छोड़कर जंगल वृंदावन में चले जाना सबसे बड़ी बात है। इस प्रसंग में मैं एक बात कहना भूल गया। प्रहलाद महाराज सबसे अच्छी बात वृंदावन में जाने की कह रहे हैं, परंतु देखा गया है सब भक्त वृंदावन नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग ऑफिस में हैं, कुछ बिजनेस में हैं, कुछ स्कूल में हैं, कुछ कॉलेज में हैं, सब लोग बंधे हुए हैं। हो सकता है प्रैक्टिकल रूप से आप वृंदावन न जा सको, परंतु भक्तों, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से वह वृंदावन जो मथुरा में है, वह वृंदावन और प्रभुपाद जी के बनाए हुए ये इस्कॉन सेंटर में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी ने वही वृंदावन का टुकड़ा इस हमारे बीड़ शहर में या इस पूरे विश्व भर में लाकर रख दिया है। वृंदावन न जा सको तो कोई बात नहीं, इस्कॉन सेंटर में श्री राधा गोविंद मंदिर में यदि हम आ जाते हैं तो वृंदावन जाने जितना फल प्राप्त होता है। इसलिए हम सबको प्राय यह मंदिर में आकर हमारे जीवन को धन्य करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने वन में जाने के लिए कहा और तत्पश्चात दूसरी बार जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की भक्ति अच्छी लगती है। हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हुआ, प्रहलाद को मारने का बहुत बहुत प्रयास किया गया। नारद मुनि कहते हैं दिग्गजे दंद सुकेश अभिचाराव पात ने, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा प्रहलाद महाराज को मारने के बहुत प्रयास किए गए परंतु प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जिसकी रक्षा करने के लिए बैठे हों उसे कौन मार सकता है, कुछ नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यपु, हमने पिछला सत्र यहाँ पर समाप्त किया था, हिरण्यकश्यपु अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर बैठ गया, चिंतित हो गया कि अब ये मेरे पुत्र का क्या किया जाए। उस समय शण और अमरक प्रहलाद के गुरु हिरण्यकश्यपु के पास आते हैं और कहते हैं सरकार आप इस प्रकार से टेंशन क्यों ले रहे हो, आप चिंतित क्यों हो, प्रभु आप याद करो आपका प्रताप आपका प्रभाव कितना है। कहते हैं जीते त्वये केन जगत त्रयम विभो, हे हिरण्यकश्यपु महाराज जब आप अपनी भौं तरेरते हो 33 करोड़ देवता आपके चरणों में आकर गिर जाते हैं, ऐसे पराक्रमी राजा एक 5 साल के बालक से डर गए। 5 साल के बालक के कारण चिंतित हो, डरो मत। जब तक शुक्राचार्य आपके गुरु जब तक नहीं आते हैं तक तब हम इस बालक को गुरुकुल में लेकर जाते हैं और वे जब आएंगे तब वे ही कुछ उपाय निकालेंगे। और आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, हम इसे गुरुकुल में लेकर जाएंगे और ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि ये विष्णु को बिल्कुल भूल जाएगा और आपको ही भगवान मानने लगेगा। इतना कह के शंड और अमरक प्रहलाद को गुरुकुल में लेकर चले गए। गुरुकुल में गए हैं, शंड और अमरक प्रहलाद महाराज को शिक्षा दे रहे हैं। एक दिन की बात, शंड और अमरक वैसे तो गुरुकुल में ही रहते थे परंतु अपने घर का कुछ काम बनाने के लिए वे 4-5 घंटा गुरुकुल से बाहर चले गए और सभी बालकों को कह के गए कि 5 घंटे के लिए आप सबको फ्री पीरियड मिला है, जो करना है करो। इतना कह के शंड और अमर गुरुकुल से चले गए और यहां पर सभी बालक खेलने लगे। बालकों का स्वभाव होता है खेलना, सभी बालक खेलने लगे परंतु प्रहलाद महाराज का मन खेलने में नहीं लगता था। तो उस समय प्रहलाद महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे और अपने सभी मित्रों को सभी छात्रों को बुलाया कि हे मेरे प्रिय मित्रों यहां पर आओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। प्रहलाद के सभी मित्र वहां पर आए, सब लोग बैठे और सब लोग प्रहलाद महाराज के मुख से प्रवचन सुनना प्रारंभ किए। प्रहलाद महाराज ने जो प्रवचन किया है भागवत के सप्तम स्कंद के छठे अध्याय में यह प्रवचन है, 26 श्लोक का यह प्रवचन है, परंतु यह प्रवचन शास्त्र में अमर है। अद्भुत प्रवचन प्रहलाद ने किया है, यद्यपि 5 साल का बालक है परंतु अद्भुत प्रवचन। हमारे पास समय बहुत कम है इसलिए सार बता देता हूं आपको। प्रवचन के प्रारंभ में प्रहलाद महाराज कहते हैं कोमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। प्रहलाद महाराज अपने छात्रों को अपने सहपाठी बालकों को कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय बालकों मेरे प्रिय मित्रों, प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति भागवत धर्मान आचरित बुद्धिमान व्यक्ति भागवत धर्म का पालन करता है। जो बुद्धिमान है वही भागवत धर्म का पालन कर सकता है। मूर्ख जो होते हैं वे कृष्ण को छोड़कर और सबकी शरण में जाते हैं। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं। तो आप सब बुद्धिमान हो इसलिए आप सब धर्म का पालन करो। कौन से धर्म का? भागवत धर्म का। और भागवत धर्म को ही दूसरे शब्द में सनातन धर्म कहा जाता है। तो आप सब भागवत धर्म का पालन करो और इह इसी जन्म में, क्योंकि इस यह मनुष्य जीवन ही भगवान की भक्ति करने के लिए योग्य शरीर है। ये मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य का देह मिला है, इसलिए इसी जन्म में भागवत धर्म का आचरण करो। क्योंकि मनुष्य के शरीर के अलावा और किसी भी देह में भक्ति नहीं हो सकती है। और सब कुछ हो सकता है परंतु भक्ति एकमात्र मनुष्य के देह में ही हो सकती है। अब कुत्ता यदि चाहे यहां बैठकर प्रवचन सुने तो वो बैठ नहीं सकता है, और यदि बैठ भी जाए तो वह समझ नहीं सकता है। मनुष्य ही एक ऐसी वस्तु है जो भगवान की भक्ति कर सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं इसी जन्म में भक्ति कर लेनी चाहिए। तो बालकों ने पूछा प्रहलाद को, प्रहलाद अभी से भक्ति करने की जरूरत है? हाँ, कुमार आचरित कुमार अवस्था से ही भक्ति करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बूढ़े हो जाने के बाद भक्ति कीजिए। बूढ़े होने के बाद क्या हो सकता है? एक बूढ़ा अपनी शक्ति से टॉयलेट में भी नहीं जा सकता है, वो भक्ति क्या करेगा? दो घंटा एक जगह पर बैठकर माला क्या जपेगा? ठीक से टॉयलेट में भी नहीं जा सकता है। भजन और भक्ति कुमार अवस्था में करनी चाहिए। 5 साल की उम्र से ही भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे तो हम तो 50 साल के हो गए तो क्या हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए? अब शास्त्र की बातों को कैसे भी पकड़ सकते हो आप? तो घर पे जाकर कहोगे तो ये प्रहलाद महाराज तो बच्चों को भक्ति करने के लिए करें, हम तो बूढ़े हो गए, छोड़ो भजन भक्ति। प्रहलाद महाराज के कहने का भाव यह है, जिस दिन से यह बुद्धि समझ जाए कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, उस दिन से भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए। कुमार आचरित, और ऐसा होता है कुमार अवस्था में मन बुद्धि ये सब कोमल होता है। आप कैसे भी बालक को मोड़ सकते हो। जैसे हरी घास होती है उसे मोड़ो तो वो मुड़ जाती है, परंतु सूखे घास को यदि मोड़ने का प्रयास करोगे तो वो टूट जाएगा। इसलिए बचपन बाल्य अवस्था से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो किसी लोगों ने पूछा, नहीं नहीं और दूसरे जन्म में कर लेंगे तो? क्यों इसी जन्म में भक्ति करनी चाहिए? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख योनि काटने के बाद यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। जल जा नव लक्षाणी, यह हमारी अपनी कथा कह रहा हूं, यह जीव सबसे पहले 9 लाख प्रकार के जन्म जल में लेता है, कभी मछली कभी मेंढक। 9 लाख जन्म जल में होता है, तत्पश्चात स्थावरा लक्ष्य विशंति 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे बनता है। क्रीमिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के छोटे मोटे मच्छर कीट पतंग इत्यादि बनता है, और पक्षीणाम 10 लक्षाणाम 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी बनने के बाद 30 लक्षाणी पशव 30 लाख प्रकार के 4 पैर पर चलने वाला प्राणी बनता है, तब जाकर 4 लक्षाणी मानुष्य उसे मनुष्य का देह प्राप्त होता है। एक एक शरीर में हजारों हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब जाकर करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद यह मनुष्य देह प्राप्त होता है। और मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद भी कितने समय के लिए? कहते हैं अध्रुवम, बहुत कम समय के लिए, केवल 100 साल के लिए। एक तो इतने लंबे समय के बाद यह मनुष्य जीवन मिला है, और ऊपर से कितने समय के लिए? बहुत कम समय के लिए, 100 साल के लिए। और कलयुग में 100 साल कौन जीता है? गांव में शुद्ध घी खाने वाले शुद्ध हवा लेने वाले 100 साल जीते थे, आज तो इस धूल और धुएं के लोक में 60-70 साल भी कोई जी ले बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। जीवन बहुत कम है और इस कम इस छोटे से जीवन में भगवान का भजन कुमार अवस्था से ही कर लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज आगे गीता गिनाते हैं कि यदि कुमार अवस्था में भजन नहीं करोगे तो फिर जीवन में भक्ति करने का समय बचेगा ही नहीं। कहते हैं कि प्रहलाद महाराज गिनाते हैं श्लोक में, परंतु समय नहीं है हमारे पास। वे कहते हैं यदि मान लीजिए कि एक व्यक्ति की 100 साल की उम्र है, कोई 100 साल जीता नहीं है, परंतु आप पकड़ लीजिए 100 साल कोई जीता है, तो हम 12 घंटा काम करते हैं और 12 घंटा सोते हैं, 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन। यदि हम 12 घंटा सोते हैं 12 घंटे की रात है, तो 100 साल की आयु में 50 साल तो रात को बीत गया सोने में, बचा कितना 50 साल। उस 50 साल में कहते हैं 20 साल बाल्य अवस्था में बचपन में खेलने कूदने में बीत जाता है। 20 साल तक बालक को बुद्धि नहीं होती है, खेलने कूदने में ध्यान देता है। बचे 50 साल, उसमें से 20 साल बचपन में निकल गए और अंत के बुढ़ापे के 20 साल कुछ कर ही नहीं पाएंगे, केवल अपने बच्चों पर बोझ बनकर रहेंगे। 50 साल बचा, उसमें से 20 साल बचपन में 20 साल बुढ़ापे में, बचा कितना 10 साल। हमारे पास केवल 10 साल बचा है और उस 10 साल में कितनी कितनी कामना है, हम इतना धन कमाएंगे, हम गाड़ी लेंगे, हम बंगला लेंगे, हम विवाह करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस प्रकार से यह कामना पूर्ण करते करते मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है, भजन नहीं कर सकता। कुछ बालकों ने कहा कि प्रहलाद हम विवाह करने के बाद भजन करेंगे तो नहीं हो सकता है। प्रहलाद महाराज कहते कथम, कैसे भजन होगा विवाह के बाद। बहुत सुंदर कहते कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रान सुहेत्सु तत्स्नेह सीता शिशुनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। कहते यदि आप बचपन में भजन भक्ति नहीं करोगे तो यदि बड़े हो जाओगे तो फिर आपका विवाह होगा, और जब विवाह होगा तो बहुत अच्छी पत्नी आपके घर पर आएगी, और जब नई नई दुल्हन घर पर आएगी तब तो संगे रहस्यम आपस में बैठकर आप दोनों एकांत में बात करोगे, बेडरूम में बैठे होंगे, अंदर से दरवाजा बंद होगा और दोनों मीठी मीठी बात करते होंगे, और आप एक बार एक पानी का ग्लास मंगाओगे तो वो दूध का ग्लास लेकर आएगी। ऐसी पत्नी आपको मिलेगी तो कब भगवान याद आएंगे बताइए। प्रहलाद महाराज गिनाते हैं संगे रहस्यम, पत्नी के साथ एकांत में बैठे बैठे मीठी मीठी बात करने में कहां भगवान याद आए। सच्ची बात है, विवाह जब होता है तो पत्नी बहुत सेवा करती है, परंतु 2, 4, 5, 10 साल के बाद वह पत्नी सिर पर बैठ जाती है। पिछले 10-12 दिन पहले मैं गुजरात में गया था, एक कवि बहुत सुंदर कह रहे थे पत्नी और माइक में कोई अंतर नहीं है, कहते पत्नी और माइक दोनों बराबर है, यदि माइक बिगड़ गया तो आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा और यदि पत्नी बिगड़ गई तो जीवन फेल हो जाएगा। परंतु माइक और पत्नी में इतना ही अंतर है कि इस माइक के सामने बोला जा सकता है, पत्नी के सामने बोल नहीं सकते हैं। माइक और पत्नी में दूसरा अंतर यह है कि इस माइक को बंद करने के लिए यहां पर स्विच दी गई है, पत्नी को बंद करने के लिए स्विच नहीं होती है। माइक और पत्नी में तीसरा अंतर यह है, यदि ये माइक बिगड़ जाए तो रिपेयर हो सकता है। खैर आप सब समझ गए होंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कहते पत्नी जब घर पर आएगी तो कैसे कथम कैसे भगवान याद आएंगे। इसलिए अभी से भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दो। और पत्नी घर पर आएगी तो दो तीन साल के बाद बच्चे होंगे, और वह छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी और पापा तोतली भाषा में आपको बुलाएंगे, वास्तव में छोटे बच्चे जब तोतली भाषा में बोलते हैं, माता पिता को बुलाते हैं, तब उसमें इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, ब्रह्मानंद भी उसके सामने तुच्छ लगता है। और उसमें भी बच्चे को गोद में लिया है और बच्चा सिर या कान को खुजलाने लगे, तब तो भगवान कहां से याद आ सकते हैं भाई। कहां से याद, बच्चे हैं, पत्नी है। और फिर जब बच्चे हो गए तो फिर बच्चों का एडमिशन नर्सरी में डालना है, अच्छे से अच्छे स्कूल, उसके लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा ट्यूशन होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए। इतनी फजीहत में फंस जाओगे। फिर बच्चों के लिए कमाना है, पत्नी के लिए धन लाना है, अच्छा घर बनाना है, उनके लिए गाड़ी लाना है, ये लाते 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 एक दिन अपने ही बनाए हुए जंजाल में फंस जाओगे। फिर बच्चे बड़े होंगे, एक लड़की भी होगी, लड़की का विवाह करोगे, मेरी बेटी का विवाह कैसे करूं, कहां करूं, अच्छा पति ढूंढ रहा हूं। और फिर उसका विवाह हो गया तो फिर यह चिंता है कि वे अपने ससुराल में ठीक तो होगी, सुखी होगी। तो इस प्रकार से जीवन बढ़ता जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं विवाह के पहले तो एक ही चाचा होते हैं, एक ही मामा होते हैं, एक ही माता होते हैं, एक ही पिता होते हैं, विवाह के बाद दो दो पिता हो जाते हैं, फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ। और अपने पिता और अपने माता को आदर दो या न दो, परंतु पत्नी के माता पिता को तो आदर देना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो दो परिवार से संबंध होगा, और दोनों परिवार के साथ संबंध रखना है, सबको खुश रखना है, और धीरे धीरे समाज की सेवा, कुटुंब की सेवा, कुटुंब पोषाय वियन निजायु, अपने कुटुंब का भरण पोषण करने में रात दिन गधे की तरह मेहनत करते 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 एक दिन अपने ही बनाए हुए कुटुंब में वैसे फंस जाओगे जैसे रेशम का कीड़ा। कहते त्यजेत कोशस कृ दिवे मान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम ओपस्त जेहम बहुमन्य मान कथम विरज्येत दुरंत मोह। रेशम का कीड़ा आप जानते हैं, रेशमी वस्त्र कैसे बनता है जानते हैं? रेशम का कीड़ा अपने मुख से ग्रंथि निकालता है और अपनी मुख की लार ग्रंथि से अपना घर बनाता है अपने आजू बाजू में। तो रेशम का कीड़ा अपने मुख से लार ग्रंथि से घर बनाना प्रारंभ करता है, बनाते जाता है। एक दिन ऐसा घर बन जाता है कि अपने ही बनाए हुए घर से वे बाहर नहीं निकल सकता है। उसकी इच्छा होती है कि मैं बाहर निकलूं, छटपटाता है, तड़पता है, बहुत जोर लगाता है, परंतु अपने ही बनाए हुए घर में वो फंस जाता है और अंत में तड़प कर मर जाता है। इस संसार का जीव इसी प्रकार विवाह करता है, बच्चे करता है, कुटुंब फैमिली कुटुंब पोषाय वियन निजायु, ये करते करते अपने ही बनाए हुए घर में फंस कर मर जाता है, कुछ नहीं कर सकता। हम कभी कभी कहते हैं आप भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, तो लोग कहते हैं क्या करें हम फंसे हुए हैं। तो क्या ब्रह्मा जी आए थे आपको फंसाने के लिए? आप अपनी स्वतंत्रता से फंसे हो, अपनी बुद्धि से विवाह किए हो। यदि किसी योग्य गुरु को पूछा होता तो वे उपदेश दे दिए होते। तो विवाह करोगे तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हे मेरे प्रिय मित्रों, विवाह के पहले ही आप भजन भक्ति प्रारंभ करो। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर उपदेश दे रहे थे। बालकों ने पूछा क्यों हम भगवान कृष्ण की भक्ति क्यों करें? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके प्रिय बन सकते हैं, सबको प्रेम कर सकते हैं। जीव का स्वभाव है प्रेम करना, और कृष्ण ही सबकी प्रेम को पूर्ण कर सकते हैं, इसलिए कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को उपदेश दे रहे थे। प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे थे और उसी समय शंड और अमरक अपना घर का काम निपटाकर वापस आए। वापस आए तो देखा कि प्रहलाद अब तक तो खुद अकेला भक्ति करता था, लेकिन अब तो वे प्रवचन करने लगा। अब तक तो अकेला भक्ति विष्णु का नाम लेता था, अब तो वे सबको विष्णु का नाम बुलवा रहा है। ये तो क्रोधित हो गए और आकर देखा तो ये तो प्रवचन कर रहा है, विचलित हो गए। सोचा कि यदि हिरण्याकश्यपु को पता चल गया कि प्रहलाद प्रचार करना शुरू कर दिया है तो वे हमको मार डालेगा। हिरण्याकश्यपु को ये बात पता चले उससे पहले हम ही हिरण्याकश्यपु को जाकर बता देते हैं कि भाई ये अब हमारे हाथ में नहीं रहेगा। तब शंड और अमग प्रहलाद को लेकर हिरण्याकश्यपु के पास गए और हिरण्याकश्यपु के पास जाकर कहा कि सरकार, यह अब तक आपका यह पुत्र केवल अकेला विष्णु का नाम लेता था, अकेला भक्ति करता था, परंतु अब ये सबको उपदेश देने लगा है, सबको उपदेश करने लगा है, प्रचार करने लगा है, अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। सूरदास जी इस बात को बहुत सुंदर पद में गाते हैं। सूरदास जी यह शंड और अमर्क ये आगे की कथा को अपने पद में बहुत सुंदर गाते हुए कहते हैं। जब शंड और अमर्क हिरण्याकश्यपु के पास आए तो क्या कहे हिरण्याकश्यपु को, वे गाते हैं,
हम तो बहुत भांति पछिहारे।
कहते हम तो बहुत भांति पछिहारे। शंड और अमर हिरण्याकश्यपु से कहते हैं कि सरकार, हमने प्रहलाद को बहुत समझाया, बहुत समझाया, परंतु ये मान नहीं रहा है।
हम तो बहुत भांति पछिहारे, दिन तो राम ही नाम उचारे, दिन तो
हमने बहुत समझाया, परंतु ये राम और कृष्ण का नाम लेना बंद नहीं कर रहा है, निरंतर विष्णु और कृष्ण का नाम ले रहा है, क्या करे इसका। तब हिरण्याकश्यपु कहते हैं, कहता है शंड और अमर तुम दोनों बाजू में रहो। अब हिरण्याकश्यपु प्रहलाद से पूछता है, प्रहलाद
नीप कहियो मंत्र कछु आई, नीप कहियो मंत्र कछु आई।
कहते हैं राजा ने कहा कि प्रहलाद तू विष्णु का नाम क्यों ले रहा है, और मेरे मन में प्रश्न है कि तुझे मारने के इतने इतने प्रयास किए फिर भी तू मर क्यों नहीं रहा है, तुझे मारने के एक से एक प्रयास किए तुझे एक चोट भी नहीं आ रही है, ऐसा क्या है, कौन सा मंत्र जानता है तू। तो प्रहलाद उत्तर देते हुए कहते हैं, पिताजी मैं कोई मंत्र वंत्र नहीं जानता हूं, मैं तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को जानता हूं, उनका नाम ले रहा हूं, उनके नाम के प्रभाव से अत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह पर मेरी रक्षा हो रही है। अच्छा कृष्ण विष्णु तेरी रक्षा करने वाला है और वह तेरी रक्षा करता है, बता कहां है तेरा विष्णु। हिरण्याकश्यपु पूछ रहा है, बता कहां है तेरा विष्णु। प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, पिताजी आप कहते हैं विष्णु कहां है, विष्णु तो सब जगह पर है, अत्र तत्र सर्वत्र, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामित तो नरसिंहा, अंतर बहिर सब जगह पर भगवान का वास है, भगवान सभी जगह पर है। अच्छा भगवान सब तेरे तेरा विष्णु सब जगह पर है, आज तो मैं तेरे विष्णु को देख लूंगा कहां है। तब हिरण्याकश्यपु की नजर एक खंभे के ऊपर गई। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि क्या इस खंभे में है तेरा विष्णु। प्रहलाद ने कहा हां पिताजी, मेरे भगवान सब जगह पर है, विष्णु सभी जगह पर है, और आप कह रहे हो इस खंभे में, हां इस खंभे में भी विष्णु है। अच्छा इस खंभे में भी तेरा विष्णु है। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि आज तो मैं तेरे विष्णु को देख लूंगा। तब हिरण्याकश्यपु धीरे धीरे उस खंभे के पास आता है और उस खंभे के पास आकर हिरण्याकश्यप अपने वज्र के समान मुष्टिका से, वज्र के समान मुष्टिका उस खंभे के ऊपर प्रहार करता है। जैसे हिरण्याकश्यप वज्र के समान मुष्टिका से उस खंभे से प्रहार किया, प्रहार करते ही उसी समय कहते हैं हिरण्याकश्यप की मुष्टिका का प्रहार होते ही उस खंभ से ऐसा आवाज निकला, निकला कि ब्रह्मांड कांपने लगा। ब्रह्मा इत्यादि देवता समझने लगे कि संसार का प्रलय होने जा रहा है, और उस समय देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए, ऋषि मुनियों के बुझे हुए यज्ञ को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, देश में कटती हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, आर्य संस्कृति और ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए, और अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह देव उस खंभे को फाड़ कर प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए हैं, अद्भुत रूप है। भगवान नरसिंह देव विकराल स्वरूप है, न तो वे पशु हैं न नर है, नर और पशु दोनों का रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। उनका स्वरूप तपाए हुए सोने के समान चमक रहा है, विकराल दाढ़ है, तलवार के समान लप लपाती हुई भगवान की जीवा है, कान खड़े हुए हैं, तलवार के समान जीवा पहाड़ की गुफा के समान नासिका है, भयानक मुख, विशाल छाती, कमर पतली, रोंगटे चंद्रमा के समान प्रकाशित, और कई सारी सेनाओं के समान भगवान की हजारों भुजा है। भगवान नरसिंह देव के नखुन शस्त्र के समान तेज है, आकाश को छूने वाला दिव्य शरीर है, और भगवान के गर्दन के ऊपर बाल, जब भगवान का सिर हिला, भगवान के बाल से बादल बिखर गए, और भगवान नरसिंह देव के डर से समस्त देवता अपने अपने विमान को लेकर वहां से भाग गए। भगवान नरसिंह देव जब सांस लेने लगे, समुद्र उद्विग्न हो गया, समुद्र में लहरें आने लगी जो लहरें आज तक आ रही है। भगवान ने सिंह नाद किया, और भगवान के सिंह नाद से दिग्गज डोल गए। उनके पैरों से भगवान नरसिंह देव धीरे 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 चलने लगे, चलने की धमक से यह पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत उड़ने लगे, और उसी समय गदा लेकर हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह देव से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। एक ओर से भगवान तैयार है, एक ओर से नरसिंह देव और हिरण्यकश्यप दोनों युद्ध करने के लिए तैयार। दोनों के हाथों में गदा है, दोनों सेनाओं एक दूसरे के मारने के लिए तैयार। हिरण्यकश्यप दूर से दौड़ते हुए भगवान नरसिंह देव को प्रहार करने के लिए आया। उसी समय भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को वैसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है, बिल्कुल मच्छर की तरह पकड़ लिया। परंतु हिरण्यकश्यप कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, भगवान का पार्षद था, साक्षात वीर रस का आस्वादन करने के लिए प्रकट हुआ। भगवान के साथ भयानक युद्ध, भयंकर युद्ध छिड़ा, और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। उसी समय भगवान नरसिंह देव ने देखा कि संध्या का समय हो चुका है, बिल्कुल अभी जो समय हो रहा है, भगवान ने देखा कि संध्या का समय हो गया है। भगवान नरसिंह देव ने जैसे ही हिरण्यकश्यप को मारने का निश्चय किया, यह धरती फटने लगी, आकाश गरजने लगा, हिरण्यकश्यप के मस्तक से गीत गीत डोलने लगे, हिरण्यकश्यप के हाथ से गदा सरकने लगी, मस्तक से ताज गिरने लगा, भयंकर सियार की आवाज होने लगी, हिरण्यकश्यप की माँ दीति के स्तन से दूध चूने लगा, हिरण्यकश्यप को सभी प्रकार के अपशुकन होने लगे। हिरण्यकश्यप समझ गया कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। ब्रह्मांड फटने लगा, और उसी समय भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को ऐसे पकड़ा जैसे सांप किसी चूहे को पकड़ लेता है। हिरण्यकश्यप को पकड़कर उस महल की चौखट पर लेकर गए, सिंहासन के ऊपर बैठकर हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में सुला दिया। गोद में सुलाकर जैसे चटाई बनाने वाला मिस्त्री घास के तिनके को फाड़ देता है, जैसे गरुड़ विषधर सर्प को लपट से फाड़ देता है, वैसे ही भगवान
नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को अपने तीक्ष्ण नखों के द्वारा फाड़ दिया। बोलो नरसिंह देव भगवान की, नरसिंह देव भगवान की, नरसिंह देव भगवान की।
श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय जय नरसिम्हा, प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंत सर्वतो मुखम नरसिंहाभीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युनमाम्यहम् तव करकमलवरेणकम् अद्भुतशृङ्गा दलितहिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर जय केशवद्रीता हरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशव नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज, विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की, भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। तो इस प्रकार से एक भक्त की विजय हुई। सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं कि वास्तव में उस खंभे में भगवान नरसिंह देव नहीं थे, परंतु प्रहलाद महाराज के मुख से निकल गया कि इस खंभे में भगवान है, तो भगवान को आना पड़ा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। उस स्तंभ से भगवान प्रकट हुए, क्यों? प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य करने के लिए। भगवत गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है, नमे भक्ता प्रणश्यति। यदि कोई मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम लेता है, मेरी कथा सुनता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में मैं कभी दुख नहीं आने देता, उसकी रक्षा करता हूं। भक्तों, यदि हम भी प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति करेंगे, यदि हम भी प्रहलाद महाराज की तरह भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे तो निश्चित प्रहलाद की तरह भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। पिछले दिनों में आप सब लोगों ने बहुत बहुत कथा सुनी, बहुत ज्ञान प्राप्त किया। हो सकता है इसमें कुछ याद रहा, कुछ भूल गए, परंतु भक्तों अब कुछ समय के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। जीवन में दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे संसार का कोई भरोसा नहीं है। इस संसार में मिलना बिछड़ना ये सब कुछ चलता रहता है। समय के प्रवाह में कुछ समय आपका और हमारा साथ में बिता, तो इस बीच में आपने बहुत कुछ श्रवण किया, बहुत कुछ भूले भी होंगे, परंतु अंत में मैं आपके चरण में यही निवेदन करता हूं, जीवन में यदि कुछ बनना चाहते हो, मनुष्य जीवन को यदि सार्थक करना चाहते हो, तो भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लो। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप अपना घर छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो। छोड़ो तो बहुत अच्छा है, छोड़ना नहीं है। आपके चरणों में एक ही निवेदन है कि आप कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार कर लो। यदि कृष्ण आपके जीवन में आ गए, निश्चित वे आपके जीवन को पवित्र कर देंगे, क्योंकि भगवान परम पवित्र है। कृष्ण हृदय में जब तक रहेंगे तब तक जीवन में सभी जगह पर हम विजयी होंगे। श्रीमद् भगवत गीता का अंत करते हुए संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, वैसे तो मैंने आपको सब कुछ सुना दिया, कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या क्या हुआ, परंतु मैं एक आपको बात कहूं, मैं मेरा मत आपको दे रहा हूं कि जहां पर कृष्ण होते हैं और जहां पर कृष्ण के भक्त होते हैं वहीं पर विजय होती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवम नीति मतिर मम। जीवन में यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो, जीतना चाहते हो, कृष्ण को अपने साथ रखो, जीवन में जीत मिलेगी। जहां पर कृष्ण है, जहां पर कृष्ण के भक्त है, वहीं पर जीत है, वहीं पर धन है, वहीं ज्ञान है, वहीं सौभाग्य है, सब कुछ वहीं। और यदि कृष्ण जीवन से चले गए तो वही अर्जुन भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन है, जब तक कृष्ण अर्जुन के साथ थे अर्जुन एक से एक पराक्रम किए। उस द्रुपद की सभा में सभी राजा महाराजाओं का मान हटाकर मत्स्य के आंख को भेद कर द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिए। अपने गांडीर के टंकार से शिवजी को प्रसन्न किया, पशु पशास्त्र धारण किया। कुरुक्षेत्र की भूमि में एक से एक राजा महाराजा रति अति रति महारति थे, परंतु अर्जुन के गांडीर से सब मौत के घाट उतर गए। अर्जुन ने एक से एक पराक्रम किए, कब तक? जब तक कृष्ण उसके साथ थे। महाभारत में वर्णन है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में चले गए तब अर्जुन भगवान की महिषियों को लेकर वापस लौट रहा था, दो तीन कोल भील के बालकों के सामने हार गया। जो अर्जुन इतना प्रतापी गांडीरधारी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, दो पांच बालकों से हार गया, तब अर्जुन ने यह स्वीकार किया कि हे कृष्ण, जब तक आप मेरे साथ थे तब तक मैं सभी जगह पर विजय हुआ, जिस दिन आप चले गए उस दिन यह अर्जुन कुछ नहीं है। भक्तों जब तक भगवान हमारे साथ होंगे तब तक जीवन में जीत होगी, विजय होगी। कृष्ण को सदैव अपने साथ रखिए। कृष्ण को साथ में रखने का अर्थ है अभिन्नत्वा नाम नामनी, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए सदा सदैव भगवान के नाम को अपने साथ में रखिए। सदैव भगवान के नाम का जप कीजिए, इस प्रकार भगवान और भागवत की कथा सुनिए। प्रति रविवार या प्रतिदिन यहाँ मंदिर में आते रहिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। कथा का अंत करते हुए आप सबके चरणों में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह तीन चार पांच प्रवचनों में सत्र में मैंने बहुत कुछ कहा और कहने में कुछ त्रुटि रह गई होगी, कभी कभार मेरे मुख से कठोर शब्द भी निकल गए होंगे। यदि आपके हृदय में ठेस पहुंची हो, किसी को दुख लगा हो, तो आपका अपना समझकर, अपना पुत्र समझकर, अपना भाई समझकर, अपना दास समझकर क्षमा कर दीजिएगा। और आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि कई लोग कहते हैं प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए, सत्य तो यह है न तो हमें कोई आशीर्वाद देने की शक्ति है न तो हमें कोई कृपा देने की शक्ति है। हम श्री राधा गोविंद जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी भक्तों के चरणों में आप प्रेम दीजिए, प्रीति दीजिए और सबको एक साथ अपने धाम में बुला लीजिए। इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करते हुए और आपके चरणों में एक ही भीख मांगता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी तरह भक्ति कर सकूँ, भक्त बन सकूँ और नित्य निरंतर भगवान की भक्त में प्रगति कर सकूँ। इसी के साथ इस भागवत सत्र को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अब भगवान की कृपा रहेगी तो फिर मिलेंगे और फिर एक नई कथा के साथ, एक नए उत्साह और एक नए आनंद के साथ फिर से इस बीड़ क्षेत्र में वापस मिलेंगे। हरे कृष्ण।